वाणी पलटू साहब जी की कुंडलियां। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार।
सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा ने एक ही उपदेश दिया है। ये जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन सब धर्मों की तह में जो रूहानियत है, हकीकत है, वह एक ही है। संत महात्मा हमें रीति रिवाजों में फंसाने के लिए नहीं आते, वह तो सिर्फ रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं। आप किसी भी महात्मा की वाणी को पढ़कर देख लें, सब ने अपने एक ही अनुभव का बयान किया है। यह पलटू साहब की वाणी है। पलटू साहब यूपी के अंदर अयोध्या नगरी में एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। जो कुछ भी आपने कहा है बड़े साहस और निडरता के साथ कहा है। आप उपदेश करते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुंदर के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम मन के अधीन होकर जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। महात्मा समझाते हैं कि ये जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं ये कर्म भूमि है, कर्मा संदरा खेत है। यहाँ आकर हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटने के लिए आना पड़ेगा। अगर कोई मिर्च बोता है तो वह मिर्च की फसल काटता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम का फल खाता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के कारण हम देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं और ना ही बुरे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। अगर नेक कर्म भी करते हैं तो क्या नतीजा होता है? सेठ शाहूकार या राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हकूमत हासिल करके आ जाते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाता है और हकूमत की बागडोर मिल जाती है। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियाँ पड़ जाती हैं। सी क्लास से निकलकर जेल की ए क्लास में चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों और वैकुंठों में पहुंच जाते हैं। लेकिन वह भी भोग योनियाँ हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। उन्हें भोग कर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इस दुनिया को महात्मा दुखों और सुखों की नगरी इसलिए कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमें यहाँ थोड़े बहुत सुख भी मिल जाते हैं और दुखों का भी सामना करना पड़ता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हरख सोग का नगर एह किया, से उबरे जो सतगुर शरणैया। यहाँ कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसे केवल दुख ही दुख भुगतने पड़ते हों, कभी सुख का सांस ना आया हो। ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत सुख का सांस भी आ जाता है। जब तक हम देह में बैठे हैं दुख सुख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी इस जामे में या इस दुनिया में पुण्यों और पापों की वजह से आते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, केवल पाप होते तो हम नरकों में जलते होते। कुछ पुण्य मिलते हैं कुछ पाप, तभी हमें इंसान का जामा मिलता है। हम इस दुनिया में आकर सुख दुख का हिसाब दे रहे हैं। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं और पाप थोड़े हैं, इसलिए वह ज़्यादा सुखी और थोड़ा दुखी है। किसी के ज़्यादा पाप हैं और थोड़े पुण्य हैं, इसलिए वह दुखी ज़्यादा है सुखी कम है। लेकिन जब तक हम देह में बैठे हैं, हम सबको दुख और मुसीबतें तो भुगतनी ही पड़ती हैं। महात्मा समझाते हैं कि अगर हम हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर पहुंचकर ही कर सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिलकर ही कर सकते हैं। महात्मा आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर याद करते हैं, क्योंकि पत्नी और पति का रिश्ता प्रेम, प्यार और भक्ति का रिश्ता होता है। रामाकृष्णा मिशन वाले इसे माँ और बेटे का रिश्ता कहते हैं। इन सभी रिश्तों की जो असल कड़ी है वह केवल भक्ति और प्यार है। इसी प्रकार हज़रत ईसा ने इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाया है। बाप और बेटे का रिश्ता भी प्रेम और प्यार का रिश्ता है। इसलिए हर एक महात्मा यही उपदेश देता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल प्रेम और भक्ति का रिश्ता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है, यानी परमात्मा से प्यार करके ही हम वापस जाकर उससे मिल सकते हैं। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा नहीं, फिर परमात्मा से प्यार किस तरह करें, उसकी भक्ति किस तरह करें? जिस चीज़ को कभी आँखों से देखा ही नहीं, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? किसकी भक्ति, किसका प्यार, किसकी संगत हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की तरफ ले जा सकती है? हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, जिससे भी प्यार करेंगे, मरने के बाद हमें उसी की शक्ल अपनानी पड़ेगी। जहां आसा तहां बासा, जिन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा सारी उम्र तक का लगाव रहता है, मौत के समय वह ही सिनेमे की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और आखिरी वक्त जिस और भी हमारा ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह विचार करके देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है, किसकी भक्ति, किसका प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगा सकता है। इस बात को समझने के लिए सारी दुनिया को आंखों के सामने रखकर विचारने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या देखते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पांच तत्वों की बनी हुई हैं। ये पांच तत्व हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। केवल इंसान में ही ये पांचों तत्व पूरी तरह से मौजूद हैं। इसलिए महात्मा इसे अशरफुल मखलूकात और सृष्टि का सरताज कहते हैं। इस दुनिया में पहली किस्म उन जीवों की है जिनमें केवल पानी का तत्व प्रधान होता है, जैसे सब्जी, घास फूस, पेड़ पौधे आदि। अगर हम पांच तत्व के पुतले होकर इन पेड़ पौधों की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो आप ही सोचें कि हम तरक्की करेंगे या नीचे गिरेंगे, क्योंकि हम जिसकी भी भक्ति करेंगे मौत के बाद उसी जामे में जाना पड़ेगा, उसी की शक्ल अख्तियार करनी पड़ेगी। इसलिए ये जितना भी वनस्पति जगत है, प्लांट किंगडम है, पेड़ पौधे हैं, ये हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। दूसरी किस्म में बिच्छू, सांप, कीड़े मकौड़े आदि आते हैं, जिनमें केवल दो तत्व पृथ्वी और अग्नि होते हैं। अगर हम पांच तत्वों वाले इंसान इन दो तत्वों वाले सांप, बिच्छू आदि की भक्ति करेंगे तो भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, नीचे ही गिरेंगे। तीसरी किस्म पक्षियों की है, जिनमें तीन तत्व हैं। हमारे अंदर पांच तत्व मौजूद हैं। अगर हम गरुड़, कबूतर, चिड़ियों आदि की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो भी हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें निचले जामे में ही आना पड़ेगा। चौथी किस्म छुपाया जानवरों की है। इनमें बुद्धि और आकाश का तत्व नहीं है, बाकी सब तत्व मौजूद हैं। अगर हम गाय, भैंस, घोड़ों आदि की भक्ति करते हैं तो भी हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तब भी हमारा ख्याल नीचे ही गिरता है। पांचवी किस्म खुद इंसान की है, और ये पांचों तत्व हम सब के अंदर मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि इंसान इंसान की भक्ति करे तो क्यों करे, खासकर आज के ज़माने में जबकि हम सब के समान अधिकार हैं। अब इंसान इंसान की भक्ति नहीं करता, गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, और देवी देवता किसी ने देखे नहीं, यहाँ आकर हम बड़ी उलझन में फंस जाते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसके साथ प्यार करना है, किसकी भक्ति और प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की ओर ले जा सकता है। हजूर बड़े महाराज जी हमें बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते थे कि अगर हम एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें जिनका कनेक्शन किसी बैटरी या बिजली से ना हो, हम किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उन्हें बिजली या बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों की खोज करनी है और उनकी संगत करनी है जिनकी लेव उस परमात्मा के साथ लगी हुई है। हमें उनकी संगत इसलिए करनी है कि उनकी संगत में जाकर हमारा भी ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए और हमें भी परमात्मा की भक्ति करने के साधन और तरीका पता चल जाए। हमारा मन हमेशा संगत और सोबत का असर लेता है। अगर हम बुरे लोगों के पास बैठेंगे, चोरों ठगों और शराबियों की संगत करेंगे तो धीरे धीरे हमें भी चोरी ठगी और शराब की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं जो सदा परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें देखकर हमारा भी ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, हम नशीनी सायते बा औलिया बेहतर अज सद साला तायत बेरिया। मालिक के औलिया संतों और भक्तों की एक घड़ी की संगत मन बुद्धि से की गई 100 साल की भक्ति से कहीं अच्छी है। अगर भक्ति करने का तरीका मालूम नहीं है, रास्ता पूर्व की ओर है, हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपनी मंजिल मकसूद से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं और हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा के साथ मिला देते हैं। लेकिन महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? गुरु नानक साहब समझाते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। महात्मा सत्संग उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द या नाम का होका दिया जाता है, सिर्फ नाम या शब्द का प्रचार किया जाता है। इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों से निकालकर परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाते हैं। हमें कैसे महात्मा की संगत और सोबत करनी चाहिए? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए जो खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ सकते हों। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, गुरमुख साचा शब्द सलाहे मन साचा तिस रोग गया। गुरमुख सच्चे और पवित्र होते हैं। वह किस प्रकार सच्चे और पवित्र होते हैं? शब्द या नाम की कमाई करके उनके अंदर से होमे रूपी बीमारी निकल जाती है और वह वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाते हैं। ऐसे गुरमुखों की संगत में जाने से लाभ ही लाभ है, कभी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसे जो भी मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह कभी सोसाइटी पर अपना बोझ नहीं डालते। वह हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हुए साथ संगत की सेवा करते हैं। आप किसी भी महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ के देख लें। गुरु नानक साहब ने करतारपुर गांव में खुद अपने हाथों से खेती की, अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश की। आप हमारे लिए अपनी वाणी में क्या उपदेश देकर गए हैं? गुरु पीर सदाए मंगन जाए ताक मूल न लगिए पाए काल खाए कुछ हथों दे नानक राह पछाणिए से। अगर कोई गुरु या पीर होकर सेवकों से मांगता फिरता है उसके तो पैरों पर माथा ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा की खोज करनी चाहिए? काल खाए कि छत्थों दे जो खुद हक हलाल की कमाई करता हो और साथ संगत की सेवा करता हो। इसी तरह कबीर साहब की जीवनी पढ़कर देख लें। आप सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा करते रहे, हालांकि बलख बखारे के बादशाह जैसे लोग आपके सेवक थे जो आपको अच्छे अच्छे महलों में भी रख सकते थे। कबीर साहब भी फरमाते हैं, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब किछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। सेवक का धर्म है कि जो कुछ है उसे गुरमुखों का समझकर इस्तेमाल करे, लेकिन गुरमुखों का भी असूल है कि सेवक की सुई तक ना लें। अगर लेते हैं वह गुरमुख नहीं है। कबीर साहब फिर क्या फरमाते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज। संत महात्मा हमारा पैसा परोपकार के लिए खर्च जरूर करवा देंगे, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लेंगे। महात्मा रविदास के जीवन के बारे में आप जानते ही हैं कि किस प्रकार आप जीवन भर जूतियां गांठ गांठ कर अपना गुजारा करते रहे। हालांकि आपके शिष्यों में राजा पीपा और मीराबाई जैसे बड़े बड़े लोग भी थे। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। उसे बिरादरी के लोगों ने ताना मारा कि तू खुद तो महलों की रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठ गांठ कर गुजारा कर रहा है। ये कुदरती है कि सेवक अपने गुरु के बारे में ताना सहन नहीं कर सकता। वह एक बड़ा कीमती हीरा लेकर महात्मा रविदास की कुटिया में गई और हाथ जोड़कर विनती की कि गुरुदेव, मुझे लोक लाज सताती है, दुनिया ताने सुनाती है। आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा और सुंदर मकान बनाकर सुख की ज़िंदगी गुजारें। इस पर रविदास जी ने फरमाया कि बेटी, मुझे तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है इस कुंड के पानी से हुआ है, जूतियाँ गांठने से ही मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर बैठकर भजन कर लिया कर। इस तरह महात्मा स्वयं एक मिसाल बनकर बताते हैं कि किस तरह हक हलाल की कमाई करते हुए सत्संगत की सेवा करनी चाहिए। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें ऐसे गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए। हमारा असली गुरु शब्द या नाम है, जो हमारे अंदर दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल में निरंतर गूंज रहा है। हम बाहर गुरुमुखों से इसलिए प्यार करते हैं कि वह शब्द या नाम में से आते हैं, दुनिया में आकर शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, वाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। वह जो बाणी है, शब्द या नाम है, वह हमारा गुरु है। और सतगुरु का असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है, इंसान का गुरु केवल इंसान ही हो सकता है। गाय भैंसों की बोली हमें समझ नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई इंसान के रूप में हमें ना समझाए, हम इस अज्ञानता के अंधेरे से कभी निकल नहीं सकते। सतगुरु सतनाम रूपी समुन्दर से शब्द में से आते हैं, शब्द का ही प्रचार करते हैं। लेकिन कौन सी वाणी हमारा गुरु है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, वाणी वज्जी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। वह वाणी चारों युगों से चली आ रही है। वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ये नहीं कि वह वाणी पहले कुछ और थी या आगे जाकर कुछ और हो जाएगी। ना तो उस वाणी का इतिहास खोजा जा सकता है और ना ही इसकी कोई मियाद मुकर्रर की जा सकती है। सबसे पहले वह वाणी थी, सब कुछ उस वाणी ने पैदा किया। जो कुछ हम आँखों से देख रहे हैं ये सब नाश और फना हो जाएगा, लेकिन इसे पैदा करने वाली वाणी कभी नाश नहीं होती। वह वाणी ना पंजाबी में लिखी जा सकती है ना हिंदी में। हम दुनिया के जीव व्यर्थ ही अलग अलग भाषाओं के विवाद में फंसे हुए हैं। वह तो अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज है और दिन रात हमारे अंदर गूंज रही है। वह वाणी हम सबका गुरु है। वह वाणी कहाँ है? गुरु नानक देव जी खुद फरमाते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिबलाई। हम सबके अंदर आँखों के पीछे तीसरे तिल में एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति में से एक मीठी और सुरीली आवाज़ उठ रही है। जो उस ज्योति को पकड़ते हैं, उस ज्योति के दर्शन करते हैं और उसमें से निकलने वाली आवाज़ को सुनते हैं, उनका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हम गुरुमुख या सतगुरु के साथ इसलिए प्यार करते हैं कि उन्हें वापस जाकर उस वाणी शब्द या नाम में ही समा जाना है और हम भी उनके प्यार और भक्ति के बंधे हुए उसी शब्द या नाम में हमेशा के लिए समा जाएंगे। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं कि ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की ओर जाता है। हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक, उसका प्यार और विरह तथा उससे मिलने की तड़प पैदा होती है। ऐसे महात्माओं की संगत में हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? पलटू साहब समझाते हैं कि नम्रता और आजिज़ी के ज़रिए हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे महात्मा दुनिया में ना कोई कौम बनाने के लिए आते हैं, ना कोई फ़ौज भर्ती करने के लिए आते हैं और ना ही वह दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आते हैं और ना उन्हें हमसे कुछ लेना है। हमें गर्ज है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा पाकर मालिक से मिल जाएं। जितनी हमारे मन में नम्रता होगी, प्रेम प्यार और विरह होगी, उतना ही हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत से लाभ उठा सकेंगे। पलटू साहब इतिहास से बड़ी सुंदर मिसालें दे देकर समझा रहे हैं कि मालिक के प्यारों और भक्तों की संगत से लोग किस तरह फायदा उठाते रहे हैं।
केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी।
आप फरमाते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज दुर्योधन की नगरी में जाते हैं। दुर्योधन को इस बात का अभिमान और अहंकार था कि मैं राजा हूँ, कृष्ण जी मेरे महलों में आकर ठहरेंगे और मेरे यहाँ अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण सीधे विदुर के घर गए, उसके घर का रूखा सूखा साग और रोटी खाई, क्योंकि विदुर के अंदर सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। आपको अभिमानी पुरुष से क्या लेना था? मालिक के भगत और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे हुए होते हैं।
जप तप नेम आचार करे बो तेरा कोई, खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई।
अब श्री रामचंद्र जी महाराज का उदाहरण देते हैं। जब आप वनवास में थे, तब बहुत से तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों को इस बात का अहंकार था कि भगवान हमारी कुटिया में पधारेंगे। उनको देखकर गरीब शबरी के मन में भी चाव और प्यार पैदा हुआ कि रामचंद्र जी महाराज उसकी कुटिया में क्यों ना पधारें। अब सोचती है, अगर भगवान मेरी कुटिया में आ गए तो मैं उन्हें खाने के लिए क्या पेश करूँगी। गरीब जाति की थी, उसे पेड़ों पर से फल कौन तोड़ने देता। वह जंगल में जाती है, जो भी बेर उसे नीचे गिरे हुए मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करके घर ले आती है। फिर ख्याल आता है कि अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान को देने के काबिल नहीं होंगे, इसलिए वह एक एक बेर को चखती है। जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती है, जो मीठे हैं उन्हें इकट्ठा करती जाती है। लेकिन रामचंद्र जी के प्रेम में इतनी लीन हुई बैठी थी, भूल जाती है कि चखने से बेर जूठे हो गए हैं। पलटू साहब कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज सीधे उस गरीब भीलनी की झोंपड़ी में गए और उसके जूठे बेर खाए, क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था।
किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सब का मान सुपच बिन घंट ना बाजा।
अब पलटू साहब फरमाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, धन दौलत की कोई कमी ना थी, सब साधुओं संतों महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। तब पांडवों ने कृष्ण जी से विनती की कि गुरुदेव, आप भोजन करके देखें, शायद आपके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। श्री कृष्ण जी महाराज ने भोजन किया, लेकिन आकाश में घंटा फिर भी ना बजा। सब बहुत निराश हुए, फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान, आप अंतर ध्यान होकर देखें कि वह कौन सा ऐसा गुरमुख है, कौन सा मालिक का भगत और प्यारा है, जिसके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर सुपच नाम का एक मालिक का भगत और प्यारा है। वह नीची जाति का है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वह तुम्हारे घर आकर भोजन ना कर ले, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अभी तक मन में राजा होने का अहंकार था, उन्होंने अहलकारों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा कि जब महात्मा को पता चलेगा कि यहाँ सब साधुओं को मुफ्त खाना दिया जा रहा है तो वह आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियाँ तो अपने आप आ ही जाती हैं। लेकिन महात्मा को क्या आना था? जब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन के लिए प्रार्थना की, विनती की, महात्मा को पता था कि इनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और साफ नहीं है। उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देते, मैं आपके घर जाकर भोजन नहीं कर सकता। निराश होकर घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा है, हम महात्मा को 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पांव चलकर महात्मा की कुटिया में हाजिर हुई। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतापूर्वक विनती की कि भगवान, आप हमारे घर पधारकर भोजन करें। महात्मा ने द्रौपदी के सामने भी वही शर्त रखी। इस पर द्रौपदी ने बड़ी नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैंने आप जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में सुना है कि अगर पूर्ण महात्मा के दर्शनों के लिए जाएं तो कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये सुनकर महात्मा ने जरा देरी ना की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है, उठकर उसके साथ चल आए। इसलिए पलटू साहब के समझाने का केवल यही मतलब है कि माल्य के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता, प्रेम और प्यार के जरिए ही फायदा उठा सकते हैं।
पलटू ऊंची जात को जन कोए करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार।
सब कुछ समझाकर अब पलटू साहब बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की जरूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति पांति बदलने से हम परमात्मा से मिलने के हकदार बन सकेंगे, हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे या सिख से ईसाई बनकर परमात्मा को पा सकेंगे। पलटू साहब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पांति की कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल भक्ति, प्रेम और प्यार की जरूरत है। कबीर साहब का भी यही उपदेश है, जात पात पूछे ना कोए, हर को भजे सो हर का होए। यानी परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पांति की कोई पूछ पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप बन जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात न जाए। जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वहाँ ना तो हमारा शरीर पहुँचता है ना हमारी जाति। ये जितनी भी जातियाँ हैं इनका संबंध या त्वालुक इस शरीर के साथ है। इस शरीर को या तो अग्नि के स्पुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर रह जाना है। हमारी सबकी जाति पांति यहीं रुलती रह जाती है। ना उस परमात्मा की कोई जाति है और ना हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखें, कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है, वह सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फकीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, यानी वह रब या परमात्मा जो सारी दुनिया का एक ही है। हर एक महात्मा यही समझाते हैं कि परमात्मा एक है, हमेशा से वह एक ही परमात्मा चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चहन नहीं कोए। उस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना ही उसकी कोई जाति है। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला उत्ते होन बेड़े खड़ी रहनगियाँ जाता। जो अपने अमलों की ओर, कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का हिसाब किताब ख़त्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जाति पांति का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछता। गुरु अमरदास जी ने तो जाति पांति का यहाँ तक खंडन किया है, बिन नामें सब नीच जात हैं, बिष्टा के कीड़े हुएं। जो शब्द या नाम की कमाई नहीं करते उनसे ज़्यादा नीची जाति वाला कौन हो सकता है, क्योंकि मौत के बाद उन्होंने गंदगी के कीड़े बनना है। किनकी जाति ऊंची है? जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, जिसके अंदर नाम बस जाता है। जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई में लगे रहते हैं वह ऊंचे हैं, उन्हें वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। आप देखें, परमात्मा एक है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। अच्छी तरह से देखें, हर एक इंसान के नाक मुंह कान वगैरह एक जैसे हैं। मौसम की गर्मी सर्दी के कारण हमारे रंग रूप में ज़रूर कुछ तब्दीली आ जाती है, वह परमात्मा खुद ही हर एक के शरीर में बैठा हुआ है और हर एक को अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर किसी एक कौम या मज़हब के लोग दूसरी कौम और मज़हब से नफरत करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक उस कौम और मज़हब में मालिक के मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। जिनका परमात्मा के साथ प्यार होता है वह परमात्मा की खलकत या उसके पैदा किए गए जीवों के साथ भी प्यार करते हैं। इन मज़हबों का उद्देश्य हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा करना है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करना है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना नहीं है। ये नहीं कि एक मज़हब के लोग दूसरे को देख भी ना सकें और एक दूसरे के गले काटने की योजनाएं बनाएं, ये कोई भक्ति करने का तरीका नहीं है। अगर हम किसी को मारते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम परमात्मा को मारते हैं। जब हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है, हम बुरा किसे कह सकते हैं? इसलिए सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यर्थ ही छोटे छोटे दायरों में ना फंसो, जाति पांति के भेदभाव में ना उलझो, अपने अंदर मालिक की भक्ति का सच्चा इश्क पैदा करो, सच्चा प्रेम और प्यार पैदा करो। ये जातियाँ हमें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी, बल्कि उसकी भक्ति और प्यार, उसका सच्चा इश्क और प्रेम ही हमें वापस ले जाकर उससे मिलाएगा।
उल्टा कुआ गगन में तिस में जरै चिराग, उल्टा कुआ गगन में तिस में जरै चिराग।
इस कुंडली में पलटू साहब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। तुलसी साहब भी इसके बारे में फरमाते हैं कि शरीर से बाहर जहां भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वह नकली मंदिर, नकली मस्जिदें, नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, असली गिरजाघर हमारा अपना शरीर है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक और दूसरी आँखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आँखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई इसे घर दर यानी निज घर जाने का दरवाज़ा कहता है, तो कोई मुक्ति का द्वार। ईसा मसीह ने भी इशारा किया था, नॉक इट शैल ओपन, सीक ये शैल फाइंड, यानी इस घर के दरवाजे को खटकाओ वह खुल जाएगा। जब वह दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक के मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सब के अंदर आँखों के पीछे है। इसी को महात्माओं ने तीसरा तिल और शिव नेत्र कहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन परम परम बहु धावे, तिल कर नहीं वासा पाइए। हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर मिनट मिनट, सेकंड सेकंड इन दोनों द्वारों के जरिए सारी दुनिया में दौड़ने की कोशिश करता है, पल भर के लिए भी आँखों के पीछे नहीं ठहरता। ये नौ द्वारे कौन से हैं? दो आँखें हैं, दो कान के सुराख हैं, दो नाक के सुराख हैं, मुँह है, नीचे दो इंद्रियों के सुराख हैं। जितना भी हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है इन्हीं नौ द्वारों के जरिए फैलता है। यहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कोई कौमों मज़हबों के बारे में सोचता है, तो कोई अपनी दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है। मन कभी किसी का टिककर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये सारा दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आँखों के आगे आ जाती है। आप बच्चों के बारे में सोचेंगे तो बच्चों की शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। इसे महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। सिमरन और ध्यान करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है, और जिनका हम सिमरन और ध्यान करते हैं उन्हीं शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना लगाव हो जाता है कि हमें रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं, और मौत के समय उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती हैं। जहां आशा तहां वासा, जिस ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है उसी का मोह हमें बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। दुनिया का मोह या प्यार ही हमें देह के बंधनों में फंसाता है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह या प्यार करके, उन्हीं का सिमरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते हैं। हम उनका सिमरन कर रहे हैं जिन्होंने नाश और फना हो जाना है। महात्मा देखते हैं कि हम सबको सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वह हमारी इस आदत से फायदा उठाकर हमें सिमरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह या प्यार से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। वह समझाते हैं कि आप उस चीज़ का सिमरन और ध्यान करें जो कभी नाश नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। वह कौन है? वह सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है, कुल मालिक है, जिसके हजारों नाम लोगों ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। संतों के हिदायत के अनुसार सिमरन के द्वारा हमें इन नौ द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, लेकिन ख्याल यहाँ आकर इस स्थान पर ठहर नहीं पाता है, बार बार नीचे की ओर गिरता है। तब हमें अपने गुरुमुख अथवा सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को यहाँ ठहराने की आदत डालनी चाहिए। गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों करना है? जैसा कि शुरू में अर्ज किया जा चुका है, ये जो भी कुल दुनिया है सबने नाश और फना हो जाना है। अगर हम इनका ध्यान करेंगे, इनका मोह और प्यार हमें खींच कर देह के बंधनों में ले आएगा। लेकिन सतगुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम है। वह वापस जाकर शब्द या नाम में ही लीन हो जाते हैं। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और हम भी उनके साथ उसी नाम या शब्द में समा जाएंगे। इसलिए हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आँखों के बीच ठहराने की आदत डालनी है। आँखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाज़ा आँखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहें तो जब तक किले का दरवाज़ा नहीं मिलता हम किले के अंदर कैसे जा सकते हैं? ये शरीर ही हमारा असली घर है, यहाँ परमात्मा रहता है। उसका दरवाज़ा आँखों के पीछे तीसरा तिल है। हमें अपने ख्याल को नौ द्वारों से निकालकर इस केंद्र तीसरे तिल में एकाग्र करना है। आँखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहब उल्टा कुआं कहते हैं। कुएं का तल नीचे की ओर होता है, हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। जब आप नौ द्वारों से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो आपको वहाँ अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वह किस प्रकार की ज्योति है इसके बारे में आगे फरमाते हैं।
तिसमें जरा चिराग, बिना रोगन बिन बाती।
बाहर जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बाती की जरूरत होती है, लेकिन जिस चिराग और ज्योति का जिक्र पलटू साहब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सबके अंदर है, जो चोरों ठगों के अंदर, साधु संतों महात्माओं के अंदर जल रही है, उस ज्योति के लिए ना तेल की ज़रूरत पड़ती है ना बत्ती की। वह ज्योति कब तक हमारे अंदर जलती रहती है, पलटू साहब आगे फरमाते हैं।
छह ऋतु बारह मास रहत जरते दिन राती।
साल में छह ऋतुएं होती हैं, बारह महीने होते हैं और दिन तथा रात होते हैं। वह ज्योति दिन रात 24 घंटे हर एक के अंदर जलती रहती है, लेकिन कौन भाग्यशाली अंदर जाकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं, पलटू साहब आगे बताते हैं।
सतगुर मिला जो होए, ताहे की नजर में आवे।
जो गुरमुखों की संगत करते हैं, जो उनके समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए नौ द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वही अंदर उस ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र आदि पढ़कर सुनकर उस ज्योति के दर्शन कर सकेंगे? पलटू साहब फरमाते हैं,
बिन सतगुर को होए नहीं वाको दर्शावे।
जो गुरमुख या सतगुरु की संगत नहीं करते, जो मन और बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योति के कभी दर्शन नहीं होते।
निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति माही।
उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज उठ रही है। इस आवाज को कोई महात्मा वाणी कहते हैं, कोई कलमा कहते हैं, कोई शब्द, कोई नाम, तो कोई आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि कहकर समझाते हैं। हजरत ईसा ने इसी आवाज को लागोस और वर्ड कहा है। वह आवाज कहीं बाहर नहीं है, वह आवाज हमारी आंखों के पीछे तीसरे तिल पर दिन रात हरेक के अंदर धुनकारें दे रही है। गुरु अमरदास जी भी इसी आवाज का जिक्र करते हैं, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावणिया। मुक्ति का दरवाजा आंखों के नीचे नीचे नहीं है, आंखों के पीछे है, जहां सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। तुलसी साहब समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हमारा शरीर कुदरती काबा है, इसके अंदर जाकर ही हमें परमात्मा से मिलने का हज करना है, और हमारा माथा इस कुदरती काबे की मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी, जिसमें खड़े होकर मुल्ला ऊंची आवाज में बांग देता है, कलमा पढ़ता है। इसके अंदर ख्याल को इकट्ठा करो, आपको ये असली कलमा, असली बांगे आसमानी सुनाई देगी। वह मीठी और सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से उठती है, वह सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रही है। पलटू साहब फरमाते हैं, निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति माही। जब यहाँ ख्याल रखकर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो साथ ही हमें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देने लगती है। आप आगे फरमाते हैं,
ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं।
ये ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधेरे की ओर ले जाती हैं। सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका बताते हैं कि सिमरन और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा और मन को आंखों के पीछे ले आओ, उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं, उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। इस ज्योति का जिक्र सिर्फ पलटू साहब ही नहीं करते, बल्कि हर एक महात्मा ने इस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि वह अगम की ज्योति बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रही है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। जब तक हम इन दो आंखों से देखते हैं, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दो आंखों से ख्याल को निकालकर तीसरी आंख खोल लेंगे, हम एकता में आ जाएंगे। यहाँ स्वामी जी महाराज भी उसी ज्योति का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इसी ज्योति की ओर इशारा किया है, इफ दाई आई सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा, तो तेरा सारा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकार हर एक महात्मा उस ज्योति का जिक्र करता है। हम यहाँ आंखों के पीछे अपने ख्याल को एकाग्र करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं। आंखों के पीछे ख्याल को एकाग्र करके उस शब्द को, घंटे और शंख की आवाज को सुनना है। उस ज्योति के दर्शन करने में मुक्ति है, उस घंटे और शंख की आवाज को सुनने में मुक्ति है। जब तक हम आंखों के नीचे बैठे हैं, तब तक हम जितना चाहें मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में भटक कर देख लें, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर सत्संग सुनकर देख लें, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। असली गुरुद्वारा, असली मंदिर, असली मस्जिद, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी है, जहां जाकर हमें ज्योति के दर्शन तथा घंटे और संख की आवाज़ को सुनना है, वह हमारी आँखों के पीछे है। आप अच्छी तरह सोचने की कोशिश करें कि ये जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर हैं, उन सब के चिन्ह या निशान रस्मों रिवाज एक जैसे नज़र आते हैं। किसी मंदिर के अंदर चले जाएं, सबसे पहले उसके मेहराब या तोरण में घंटा लगा हुआ मिलेगा। द्वार पर उस घंटे को बजाकर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। लगभग हर एक मंदिर के अंदर ज्योति जलाई जाती है। किसी गुरुद्वारे में जाएं, वहां भी घंटे और शंख बजाए जाते हैं, ज्योति जलाई जाती है। इसी प्रकार मुसलमानों की मज़ार पर जाएं तो देखेंगे कि रात को लोग वहां चिराग जलाते हैं और मौलवी नगाड़ा बजाते हैं या बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। गिरजाघर में भी सबसे ऊपर घंटा लगा होता है। हज़रत ईसा के समझाने का मतलब ये है कि उस घंटे की आवाज़ ऊंचे से ऊंचे स्थान से नीचे की ओर आ रही है। गिरजाघर में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इसी प्रकार बौद्ध मंदिरों में भी घंटे और शंख जोर जोर से बजाए जाते हैं और अंदर ज्योति जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं और जिसे 24 घंटे जलाए रखते हैं। अखंड ज्योति तो वही है जो हमेशा जलती रहे। ये अखंड ज्योति कैसे हो सकती है जो ज़रा सी आंधी आई और बुझ गई या तेल ख़त्म हुआ तो बुझ गई। ये बाहर की ज्योतियाँ उस अंदर की ज्योति की तरफ इशारा करती हैं। हम तो बाहर की ज्योति को ही अपना ध्येय और लक्ष्य समझे बैठे हैं, लेकिन हमें ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के जरिए अपने शरीर रूपी असली मंदिर की खोज करके अपने ख्याल को एकाग्र करना है तथा उस ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं। सब कुछ समझाकर पलटू साहब फरमाते हैं,
पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिस में जरा चिराग।
ये नहीं कि हर इंसान अपने अंदर ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा या घंटे की आवाज को सुनना शुरू कर देगा। आप समझाते हैं कि पूरे भाग्य से जिन पर परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश हो जाती है, उनका ही ख्याल बाहर के भ्रमों से निकलकर शरीर के अंदर जाता है। वही भाग्यशाली लोग सतगुरु की संगत से फायदा उठाकर सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं तथा उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी लिखते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे। अगर उस परमात्मा को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आँखों वाला है। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आँखों वाले को पकड़ ले जब तक आँखों वाला आवाज़ देकर उसे अपने पास न बुला ले या उसके हाथ में अपनी उंगली थमाकर उसे अपने नज़दीक न ले आए। इसलिए हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे तथा माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वह परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शिश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए गुरु नानक साहब लिखते हैं, जीवन मरना सब तो दे ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। ऐ परमात्मा, हम सबका मरण जन्म तेरे हाथों में है। जिन पर तू बख्शिश करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। 12 माह के शुरू में गुरु अर्जन देव जी प्रार्थना करते हैं, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से ही तुझसे बिछड़कर भटक रहे हैं। चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, लेकिन ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें तुझसे दूर रखे हुए हैं। अगर तू हम पर कृपा करे, दया मेहर बख्शिश करें और हमें अपने साथ मिला ले, तभी हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते हैं। गुरु अर्जन साहब आगे फिर फरमाते हैं, आपड़ लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवण। ऐ परमात्मा, अगर जीव के अपने अख्तियार में हो कि वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछड़कर बिलखता और रोता फिरे। हमारे वश में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सकें, यही कबीर साहब का उपदेश है। साहब से सब होत है, बंदे ते कछु ना हैं, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माहें। जो कुछ भी होना है साहब या परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के जरिए ही होना है, जीव के कुछ अख्तियार में नहीं है। जब वह परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करता है, हम राई से पर्वत बन जाते हैं अथवा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर पता चलता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे थे वह तो हमारी आत्मा के ही अंदर है। परमात्मा हम पर किस तरह दया मेहर और बख्शिश करता है, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म हो वह सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। यहाँ कर्म से मतलब बख्शिश है। मालिक की बख्शिश हुई तो हमारा गुरुमुखों से मिलाप हो गया, और गुरुमुखों ने बख्शिश की तो हमें अंदर सुरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल जाता है, परमात्मा के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी तो परमात्मा के लिए यहाँ तक कहते हैं, खोटे खरे तुद आप उपाय, तुद आपे परखे लोक सबाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। ए परमात्मा, सब दुनिया के जीवों को तूने खुद पैदा किया है, खोटे भी तूने पैदा किए हैं और खरे भी तूने पैदा किए हैं, और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि खोटे कौन से हैं और खरे कौन से। जिनको तू परख के काबिल बना लेता है वह वापस जाकर तुझसे मिल जाते हैं, जिनको तू परख के काबिल नहीं बनाता वह खोटे ही रह जाते हैं। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं,
पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिस में जरे चिराग।
वह बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं, जो परमात्मा की दया मेहर बख्शिश के द्वारा अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनते हैं। इस शब्द में पलटू साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमें क्यों परमात्मा की खोज या भक्ति करनी है, और इस देह या शरीर के अंदर जाकर किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना है।
पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिस में जरे चिराग।